गाडगिल जी नमस्कार, पुनः आपका एक बार स्वागत है ये प्रसारण के हमारे प्रोग्राम में। तो हम आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल वेलबींग के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो क्यों ना हम शुरुआत करें इस बात को कहने के लिए कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है।
तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करनी है तो मन ही क्या है।
जी हाँ,
क्या चीज है,
बिल्कुल वहां शुरुआत करते हैं कि मन क्या है।
मन क्या है, तो मननाद मना इस प्रकार से उसकी व्युत्पत्ति की जाती है। एक थॉट प्रोसेस, चिंतन की हमारे जीवन में व्यवस्था है और वो चिंतन करने वाला, मनन करने वाला मन है इस प्रकार से। टेक्निकली देखा जाए तो ये एक उभयात्मक इंद्रिय है कि हमारे यहाँ कुछ ज्ञानेन्द्रिय है, जैसे चक्षुरेन्द्रिय है, श्रोतेन्द्रिय है, जिसके हमें रूप का ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान होता है इस प्रकार से। वैसा मन एक ज्ञानेन्द्रिय भी है कि जिससे हमें सुख दुख इस प्रकार के विषयों का ज्ञान होता है। तो तर्क संग्रह ने जो व्याख्या लिखी गई है, सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मना, सुख वगैरह का ज्ञान का जो कारण है, उपलब्धि यानी कि ज्ञान है यहाँ उसका मतलब, तो उसका जो कारण है वो मन है इस प्रकार। और मन केवल ज्ञानेन्द्रिय नहीं है, वो कर्मेन्द्रिय भी है। कि हमारे पास हाथ पैर वगैरह इस प्रकार के कर्मेन्द्रिय है, जिनके जरिए हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो मन के द्वारा भी कर्म होते हैं ऐसा है। तो ये दोनों तरीके से काम करते हैं, ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेन्द्रिय भी है इस प्रकार से। और वैसे देखा जाए तो ये एक श्रृंखला में एक कड़ी के जैसा काम करता है मन जो है, वो शरीर और आत्मा। ज्ञान की प्रक्रिया जो है वो बताते रहते हैं कि आत्मा से उसकी शुरुआत होती है। ये बिल्कुल अभी का जो विज्ञान कहता है उसके विपरीत है। हमने स्कूल में पढ़ाई की होगी तो हमें बताते हैं कि हम जो पिक्चर देखते हैं, सामने जो दृश्य हमें दिखाई देता है, उसका ज्ञान हमें कैसा होता है, आप कुछ याद करेंगे?
कि देखकर ज्ञान होता है।
हाँ, कि किस सामने कोई व्यक्ति है, पेड़ है, उसका ज्ञान मुझे हो जाता है। तो ऐसा होता है कि उसमें से जो किरण निकलते हैं उसके ऊपर किरण,
उसके किरणें पड़ती हैं।
हाँ, किरणें पड़ती
है,
वो हमारे आंख में घुस जाती है, बराबर है। और एक लेंस है हमारे आंख में, तो उसके जरिए उसके भीतर जो एक पटल है,
रेटिना
पर्दा, हाँ रेटिना, उसके ऊपर वो इमेज फॉर्म हो जाती है। फिर उसका एनालिसिस ब्रेन करता है, नर्वस सिस्टम करती है, और फिर हमें ज्ञान होता है कि ये पेड़ है इस प्रकार के। तो यहाँ शुरुआत हमने जो की वो बाहर से शुरुआत की, कि बाहर के वस्तुओं के ऊपर किरणें पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, वो भीतर जाती है, उसकी प्रतिमा तैयार होती है और उसका एनालिसिस होता है। प्राचीन ग्रंथों की जो पद्धति है वो बिल्कुल अलग है। तो वो बताते हैं कि आत्मा पहले निश्चय कर लेता है कि मुझे अभी चक्षुरेन्द्रिय से देखना है। शुरुआत आत्मा से होती है और फिर मुझे सुनना है तो वो श्रोतेन्द्रिय के बारे में सोचेगा, मुझे अगर देखना है तो मुझे चक्षुरेन्द्रिय से मिलना है। और उसमें जो दुआ है एक प्रकार का वो मन है, तो आत्मा मन से संयुक्त हो जाता है कि मुझे अभी चक्षुरेन्द्रिय से कुछ देखना है। तो मन चक्षुरेन्द्रिय से जुड़ा जाता है और फिर चक्षुरेन्द्रिय की वृत्तियां बाहर जाती है, ऐसा वो बोलते हैं। ये बड़ी अजीब चीज है लेकिन ठीक, हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे उसमें। और वो विषयाकार हो जाती है और वो ज्ञान लेके वापस आती है और फिर आत्मा को ज्ञान होता है कि मैं पेड़ देख रहा हूं। इसलिए आपको जो कौरवों की जो बात है ना, कौरव पांडवों की, द्रोणाचार्य ने परीक्षा की थी, एक पंछी रखा था पेड़ के ऊपर और बताया था कि उसकी जो दाहिनी आंख है वहां शरसंधान करना है आपको। तो एक एक को बुलाया और बताया कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो सभी लोगों ने सभी का वर्णन किया, पेड़ दिख रहा है, वो पंछी दिख रहा है, जो भी चीज है वो सभी दिख रही है इस प्रकार से। तो जैसे वो बताते कि ये सब दिख रहा है तो बोलते नहीं नहीं तुम बाजू हो जाओ, दूसरे को बुलाओ। ऐसे करते करते जब अर्जुन की बारी आ गई तो उसने बताया कि नहीं, मुझे सिर्फ वो आंख ही दिखाई दे रही है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो उसको कहा कि ठीक है, तुम फिर छोड़ो इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि मैं क्या देखना चाहता हूं, ये सबसे अहम चीज है इस प्रकार से। मैं अगर वो आंख ही देखना चाहता हूं तो मुझे आंख ही दिखेगी, बाकी कुछ दिखेगा नहीं। चाहे उसकी किरणें अंदर आती जाए आती जाती होगी, लेकिन मैं नहीं देखना चाहता तो मुझे ज्ञान नहीं होगा।
मेरा ध्यान किस पर केंद्रित है?
तो ये एक अहम चीज है इसमें। और दूसरी ऐसी चीज है कि मन आत्मा एक इंद्रिय के जरिए एक ही विषय का एक समय में ग्रहण करता है। ये स्पीड बहुत ज्यादा है उसकी, मन की स्पीड बहुत ज्यादा है। मन उतने ही त्वरा से दूसरे इंद्रिय से भी संयुक्त होता रहता है और वहां से भी ज्ञान कलेक्ट करता रहता है, ऐसा है। लेकिन हमारा एक ऐसा अनुभव होता है कि अगर हम पढ़ने में बिल्कुल निमग्न हो गए हो और घंटी बजी, हमें सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मेरा मन पढ़ने में लगा हुआ है, चक्षु इंद्रिय से संयुक्त है। अब मन तो श्रोतेंद्रिय की तरफ जा नहीं रहा, तो शायद वो आवाज हो रहा है, मेरे कान में भी उसकी लहरी ध्वनि लहरी जो है वो उठ रही है, फिर भी मुझे ज्ञान नहीं होता उसका, क्योंकि मन की उपस्थिति नहीं है। तो चरकाचार्य ने बड़ी अजीब व्याख्या की है, लक्षण मनसो ज्ञान से अभाव भाव है वच सती आत्मेन्द्रियम संधिकर्षात न वर्तते वैवृत्यान मनसो ज्ञानम संधिकर्षांध्य। इस प्रकार की चरक की पंक्ति है कि आत्मा इंद्रिय मन और विषय इस प्रकार की एक श्रृंखला है ज्ञान प्रक्रिया में इस प्रकार से। और फिर आत्मा पहले डिसाइड कर लेता है कि मुझे किस इंद्रिय से ज्ञान ग्रहण करना है, और फिर मन से संयुक्त हो जाता है, मन उस इंद्रिय से संयुक्त हो जाता है, इंद्रिय उस विषय से संयुक्त हो जाता है, और तो ज्ञान हो जाता है। तो सबसे अहम रोल मन का जो है वो ज्ञान ग्रहण करना, ये सबसे अहम है। सभी इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान मन के जरिए ही हम तक पहुंचता है, ये इसमें एक अहम चीज है। फिर आगे उसके कर्म भी बतलाते हैं, चिंत्यम विचार्यम उह्यम च ध्येयम संकल्प में यत्किंचित मनसोज्ञेयम तत्सर्व ही अर्थसोज्ञेयम, कि उसके ऊपर चिंतन करना कि ये कैसे है क्या है इस प्रकार का विचार्य, इस प्रकार के उसका धर्म बताते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग जिस प्रकार से कहते हैं उसको इस प्रकार से बताते हैं। उह्य उसके बारे में तर्क करना, आगे कैसे होगा क्या होगा, इस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से बताते हैं। ध्येयम भावना ज्ञान विषय इस प्रकार से बताते हैं कि उसका संबंध भावनाओं से होता है। एक बुद्धि समाधान और मनुष्य समाधान, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ निर्णय तार्किक होते हैं कि बुद्धि के हिसाब से बराबर है, इसी प्रकार से करना चाहिए था, लेकिन मन कहता है कि नहीं नहीं ये बराबर नहीं है इस प्रकार के। और कुछ विषय ऐसे होते हैं कि मन निर्णय ले लेता है, बुद्धि मानती नहीं है। अपने लड़के को सभी कुछ दे दिया क्योंकि मन का उसमें समाधान था, और बाद में लड़के ने उसको निकाल दिया घर से, तो जो व्यवहार था तार्किक बुद्धि वो सही था, वो उसको हमने सुना नहीं इस प्रकार से। तो दोनों का समाधान होना चाहिए, मन का भी समाधान होना चाहिए और बुद्धि का भी समाधान होना चाहिए, इस प्रकार से बताते हैं। तो ये चिंत्य विचार ये हुई है, उसमें काफी टेक्निकलिटीज है, मैं अभी उनमें व्याख्याओं में नहीं जाता हूं इस प्रकार से। लेकिन इन सभी के ऊपर निर्णय निर्भर रहते हैं कि क्या करना है इस प्रकार से। तो बोलते हैं कि इंद्रियण इंद्रियार्थ ही समनस्केन गुरियते कल्प्यते मनसा ऊर्ध्वं गुणतो दोषतो ध्वः, कि इंद्रिय के द्वारा मन इंद्रिय द्वारा विषय को ग्रहण करती है, विषय का ग्रहण करती है, और फिर कल्प्यते मनसा ऊर्ध्वं गुणतो दोषतो ध्वः, कि जो ज्ञान हुआ है वह गुण और दोषों के तरीके से परखा जाता है। एक इदम गुणवत् अतः ग्राह्यम, इदम दोषवत अतः त्याज्यम, ये गुणवत् है तो उसको लेना है, उसके आगे कुछ उसके बारे में करना है, ये दोषवत है त्याज्य है इसे दूर ही रहना है। इस प्रकार से जायते विषय तत्रया बुद्धि निश्चयात्मिका व्यवस्थिति तया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम्, तो उसमें एक निश्चयात्मिका बुद्धि निर्माण हो जाती है कि हाँ अभी इसमें इस प्रकार से बोलना है, इस प्रकार की कृति करनी है, और व्यवस्थित तया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम्, तो वो उस प्रकार का निश्चय कर लेता कि ये बोलना है ये कृति करनी है इस प्रकार से। तो होता है ऐसे कि ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों होने के जरिए इसके एक बहुत अहम भूमिका है, आरोग्य में हो या रोग में। ऐसा है कि मन के ऊपर ही बहुत सारी चीजें निर्भर है। देखने में तो ऐसा लगता है कि इस आदमी ने कुछ खाया और उसको तकलीफ हो गई, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में एलर्जी की बात की थी जिस प्रकार से, और कुछ ऐसा खाया कि एलर्जी हो गई है, रैश हो गया और ऐसा कुछ हो गया इस प्रकार से, तो ऐसा बोलेंगे कि हाँ ठीक है ये कारण है उसका। अगर वो उसी गलती को दोबारा दोहराता है तो अब तो उसको मालूम है कि उसके मुझे तकलीफ होती है, फिर भी उसने सेवन किया, क्यों किया? लालच में आ गया, वो चीज देखने पर ऐसा नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा खा लेंगे तो क्या होगा इस प्रकार के सोच के खा लिया फिर से और फिर तकलीफ हुई। तो इसमें वास्तव में दोष उस वस्तु का है या मन का है? तो ये बोलेंगे मन का दोष है। जब तक आपको मालूम नहीं था आपने सेवन किया तब शायद आप मान लेते हैं कि ठीक है मालूम नहीं था इसलिए गलती हो गई। इस प्रकार से आपको मालूम है भी और फिर भी आप करते हैं तो ये धृति भ्रंश कहलाते। एक आयुर्वेद में कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति मात्र कहा, सम्यक योगश्च विज्ञेय रोगारोग्य के कारण, इस प्रकार का एक श्लोक है। काल अर्थ और कर्म इनके हीन मिथ्याति योग, ये रोग के कारण है और उसका सम्यक योग आरोग्य का कारण, इस प्रकार के बताते हैं। तो काल के बारे में बताते हैं कि वर्षा ऋतु है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, अतियोग हो गया, रोग का कारण बनेगा। बहुत ही कम बारिश हो गई, हुई ही नहीं, जैसे कि आप बोल रहे थे कैलिफोर्निया में दो बरस से बारिश नहीं हो रही है तो अभी वो सब निर्बंध वगैरह सब लागू हो जाएंगे। इस प्रकार से अयोग है या हीन योग है वो भी रोगों का कारण है। मिथ्या योग है कि बारिश का मौसम है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इस प्रकार से, या गर्मी के दिन है और बारिश हो रही है, कुछ भी हो इस प्रकार से, वो मिथ्या योग कहलाता है। तो ये तीनों रोगों के कारण है। और समयोग है, ठंडी का मौसम है, ठंडी पड़ रही है, बरसात का मौसम है, अच्छी बरसात हो रही है, इस प्रकार से तो समझ लेना है कि यह समयोग है और ये आरोग्य का कारण इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार इंद्रियों के जो विषय अर्थ, चाहे वो ज्ञानेन्द्रिय हो या मन जैसा उभयात्मक इंद्रिय इस प्रकार का हो, वो अगर भली भांति चलते रहते हैं, सम्यक योग उसका रहता है तो वो स्वास्थ्य बना के रहता है। उसमें अगर हीन मिथ्याति योग इस प्रकार के हो जाते हैं, बहुत ही चिंता करने लगे, चिंतन करना मन का एक स्वाभाविक धर्म है कि ये कैसी चीज है, क्या है इस प्रकार से, लेकिन अगर हम चिंतन ही करते रहे, बहुत सोचते ही रहे और आगे प्रकृति कुछ हुई नहीं तो रोग का कारण बन जाएगा। अभी जो फिलहाल स्ट्रेस वगैरह जो चीजें रहती है उसमें ऐसा होता है कि एक हम नेगेटिव थिंकिंग में डूब जाते हैं और एक्टिविटी होती ही नहीं है क्योंकि सामने कोई मार्ग आता ही नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग इस प्रकार से अगर करेंगे उसके लिए एक सबसे अहम चीज है कि हमें न्यूट्रल होना है, पहले उस श्रृंखला से बाहर आना है, फिर परिस्थिति कैसी है, कौन सी चीजें हमारे लिए अनुकूल है वगैरह वगैरह सब देखना है और फिर उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अधिक स्थिति में क्या क्या हासिल कर सकते हैं, ऐसा सोचना है और उसके लिए कदम उठाना है। फिर भी सोचना नहीं है, चिंतन वहां पे स्टॉप होना चाहिए और हाँ अभी अभी मुझे कृति करनी है,
कर्मयोग की,
हाँ तभी उसमें से बाहर निकलेंगे ना। जब तक कि करेंगे नहीं तब तक बाहर नहीं निकलेंगे। तो चिंतन भले ही आवश्यक है और कुछ हद तक होना जरूरी भी है, लेकिन चिंतन ही करते रहेंगे और आगे कुछ स्टेप्स नहीं निकाल देंगे,
तो केवल चिंतन से काम नहीं हो सकता।
तो चिता और चिंता में बड़ा चिंता रहती जीवितम, चिता तो मरने मरे हुए आदमी को जला देती है, चिंता तो जिंदे आदमी को जला देती है, इस प्रकार का है। तो ये एक अहम चीज है, चिंतन विचार्यम उह्यम च ध्येयम संकल्प में विच यिंचित मनसोज्ञेयम तत्सर्व ही अर्थसोज्ञेय। तो इंद्रिया विग्रह कर्म मनसो स्वस्य निग्रह, इस प्रकार से भी बताते हैं कि इंद्रियों को अपने विषयों से दूर रखना ये मन का कर्तव्य है। जैसे कि लालच में आ जाते हैं, बार बार वो करने की इच्छा होती है इस प्रकार से, तो उसको नियंत्रण करने वाला मन ही है। और जैसे वो इंद्रियों को इस प्रकार के काबू में रख सकता है, मन को खुद को ही अपने काबू में रखना है। ये सबसे डिफिकल्ट चीज है कि इंद्रियों को अपने काबू में रखना और मन को खुद को अपने काबू में इस प्रकार के रखना है। और ऐसी चीज होती नहीं है, इसलिए हम आगे शायद उसके बारे में सोचेंगे कि योग का जो मार्ग है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवति। अगर वायु के ऊपर आप निग्रह करते हैं तो मन के ऊपर निग्रह हो जाता है और उसका सीधा साधा तरीका प्राणायाम है। कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। अगर प्राणायाम अगर हम भली भांति कर पाते हैं तो वायु के ऊपर हम
नियंत्रण
पा सकेंगे, और वायु के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा तो मन के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा इस प्रकार से। तो अभी हम सभी स्ट्रेस वगैरह वालों को सुझाव देते हैं कि हम प्राणायाम करो, शुरू से प्राणायाम करो इस प्रकार। लेकिन उसमें भी काफी अंतर है कि कपालभाति भस्त्रिका वगैरह एक्चुअली षटक्रियाओं में से है, वो प्राणायाम नहीं है वास्तव में। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास है और गति विच्छेद प्राणायाम इस प्रकार का पतंजलि का सूत्र। तो एक्चुअली सांस की गति कम 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 होकर रुक जानी चाहिए, गति विच्छेद होना चाहिए, ऐसा है वो वास्तव में प्राणायाम है बहिकुंभक की स्थिति में होने वाला। लेकिन उसके लिए पूर्व पेटिका में ये सभी चीजें आते हैं, कपालभाति भस्त्रिका इस प्रकार की जो चीजें आती है, लेकिन फिलहाल वो एक अलग विषय बनेगा। कहने का मतितार्थ ये है कि इंद्रियाभिग्रह कर्म मनस स्वस्य निग्रह इस प्रकार से, तो बाकी इंद्रियों पर काबू पाना और खुद के ऊपर काबू पाना ये अहम चीज है। और फिर हमें ये समझ लेना चाहिए कि हित क्या है अहित क्या है, नित्य क्या है अनित्य क्या है इस प्रकार से। और अगर हमें मिथ्या ज्ञान हो जाता है, हित को हम अहित्य समझ जाते हैं, अहित को हित समझ जाते हैं इस प्रकार के, या नित्य को अनित्य समझते हैं, अनित्य को नित्य समझते हैं इस प्रकार से, तो बड़ी गलती हो जाती है इस प्रकार से। और ये चीज काफी दिखाई देती है कि हमारे हिसाब में स्प्राउटेड चीज खाना अच्छी नहीं है, आयुर्वेद विरोधक जो धान्य है वो अच्छा नहीं है। अभी कन्वेंशनल मेडिसिन में बताते हैं कि उसमें विटामिन आता है, विटामिन ई आता है, प्रोटीन्स तो उसमें रहते हैं, जो शिम्बी धान्य जो बोलते हैं डाइकोटिलेडोन्स इस प्रकार से लेग्यूम्स, तो स्प्राउट होने से उसके गुणधर्म बढ़ते हैं इस प्रकार के बताते हैं। तो एक हमारे लोगों के मन में ऐसा पैदा हो जाता है कि नहीं नहीं ये तो खाना ही है हमें, बड़ी अच्छी चीज है इस प्रकार से। तो हम सोचते हैं कि ये गलत बात है, लेकिन इनको अज्ञान है इसके बारे में, आयुर्वेद के तत्व उनको मालूम नहीं है, तो इसलिए वो इस प्रकार से बोल रहे हैं। लेकिन ये मालूम पड़ने पर भी अगर वो व्यक्ति उसकी बहस करता रहे कि नहीं नहीं ये ऐसा ही है और ये अच्छी चीज है स्प्राउटेड खाना इस प्रकार से, कच्चा खाना खास करके इस प्रकार से। मैंने एक बड़ी अजीब बड़ी हस्ती है, खुद डॉक्टर है एलोपैथी के, उनको पार्किंसनिज्म की तकलीफ है, पार्किंसनिज्म। तो उन्होंने मुझे मैंने हिस्ट्री ले ली तो पता चला कि ये 20 वर्षों से स्प्राउट्स, कच्चे स्प्राउट्स खा रहे हैं सुबह एक बाउल
नियमित रूप से।
मैंने कहा कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक तो वात की बीमारी है, ये वात को बढ़ावा देता है, पचन को भी मंद कर देता है, इंडाइजेशन होता है। तो बोले हाँ इंडाइजेशन तो होता है, इसलिए मैं डाइजिन भी लेता हूँ इसके साथ में। मैंने कहा तो फिर लेते क्यों है ना, आपको भी मालूम है कि इसके इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन को दूर करने के लिए डाइजिन लेना है और ये तो लेना ही है इस प्रकार से। बोले मैंने ये नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है मत करिए ट्रीटमेंट, मुझे भी ट्रीटमेंट देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर बड़ा अजीब मामला हो सकता है इस प्रकार, वो बहुत ही बड़ी हस्ती है, मैंने छोड़ दिया उनको क्योंकि वो पत्ते पालने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने कहा कि मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है आपको ट्रीटमेंट देने में इस प्रकार से। लेकिन ये अभिनिवेश है कि ऐसा नहीं, क्यों जो अहित को हित ही समझ लेना है इस प्रकार से। आगे चलकर ऐसा होता है जो खासकर एडिक्शन की बात होती है, उसमें तो आदमी को पता चलता है कि यार स्मोकिंग अच्छा नहीं है, इतने सभी लोग बताते हैं कि स्मोकिंग का कैंसर होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन मन मानता नहीं,
मन नहीं मानता
कि जब भी वो इच्छा होती है, वो तीव्र इच्छा होती है और फिर नहीं नहीं अभी आज के दिन तो कर मिलूंगा इस प्रकार का होता है। वो हम कहते हैं कि धृति भ्रंश है, पहला वाला जो है वो धी भ्रंश है, ये दूसरा वाला जो है धृति भ्रंश है। कि विषय प्रवणसत्वम धृति भ्रंशान न शक्य थे नियंतुम अहिता अर्थात धृति ही नियमात्मिका इस प्रकार के। और पहला जो है वो धृति धी भ्रंश जो बताते हैं क्या नित्य हिता हित नियस बुद्धि विभ्रंश असम बुद्धि रिपश्यति विषवा भी निवेश हो नित्या नित्य हिता हित इस प्रकार का उसका चर्चा वर्णन। और एक तीसरी चीज आती है कि स्मृति भ्रंश हो जाता है कि हमने ये गलतियां की है, ये हमारे ध्यान में ही नहीं रहता और बार बार उन्हीं गलतियों को हम दोहराते रहते हैं, ये स्मृति भ्रंश इस प्रकार को कहलाते हैं। तो ये बताते हैं कि ये धी धृतिया स्मृति भ्रंश जो प्रज्ञापराप इस प्रकार का कहलाता है वो एक मूल कारण है रोगों का और उसको दूर करना जरूरी है। तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे लिए हितक क्या है अहितक क्या है और उसके अनुसार हित का सेवन करने में ही हमें रत होना है और अहितक का त्याग ही करना है। इस प्रकार से अगर गलत सहमी हो गई हित को अहित समझने लगे अहित को हित समझने लगे तो दिभ्रंश हो जाएगा और वो रोग का कारण बनेगा। मालूम है फिर भी कर रहे हैं तो वो धृतिभ्रंश कहलाएगा वो भी रोग का कारण बन जाएगा और मालूम है फिर भी भूल जाते हैं मन का कंट्रोल करने का विषय नहीं है लेकिन भूल जाते हैं ऐसी स्थिति है तो स्मृति में उसे रहेगा वो भी रोग का कारण बनेगा। तो इसमें देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि टोबैको के कारण हो गया कैंसर हो गया आगे चलकर लेकिन क्या टोबैको कैंसर का कारण है कुछ हद तक है लेकिन मूल कारण उसका धृतिभ्रंश है कि मालूम है कि टोबैको से कैंसर होता है फिर भी टोबैको सेवन करता रहा तो ये बेसिक अपराध है इस प्रकार का धृतिभ्रंश जो कहलाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करता हूं इस प्रकार के मरीजों को ये अच्छा तरीका नहीं है फिर भी काम करता है कुछ मरीजों में। मैं बताता हूं कि आप ऐसा कीजिए एक अपने लड़के का लड़की का फोटो जेब में रखे और जब भी कभी जी करता है कि मुझे अभी तंबाकू खानी है या सिगरेट ओढ़नी है तो फोटो को देखो और सोचो कि देखो जो चिल्ड्रेन लड़के होते हैं वो इमिटेटिंग करते हैं तो जो बड़े वाले लोग जो करते हैं वही लोग वो करते हैं वही चीजें वो करते हैं अनुकरण करते हैं उनका। तो मेरा बच्चा भी मेरी तरफ सिगरेट ओढ़ना अगर शुरू करेगा मेरा बच्चा भी मेरी तरफ तंबाकू खाना शुरू करेगा और उसको अगर कुछ आगे हो गया कैंसर हो गया और कुछ बीमारी हो गई वगैरह वगैरह इस प्रकार से तो ये अच्छा रहेगा। और इस विचार से फिर कुछ लोगों की तंबाकू छूटती है ऐसी गरीब छूटती है ऐसा मैंने देखा है। ये इमोशनली ब्लैकमेल करना है लेकिन ठीक है अच्छे काम के लिए अगर हम करते हैं
मन पे काबू पाने का एक और तरीका है
एक तरीका है इस प्रकार से। नहीं तो आपको भली भांति समझ ही लेना है कि ये चीज अच्छी नहीं है और फिर उसका त्याग करना है इस प्रकार से और जो अच्छी चीज है उसके बारे में प्रोत्साहित करना है। सुबह जल्दी उठना है हम बहुत बार निश्चय करते हैं हर बरस एक तारीख को हम निश्चय करते हैं 1 जनवरी से हम जल्दी उठना शुरू करेंगे और वो 1 तारीख कभी आती ही नहीं है बरस से बरस निकल जाते हैं। व्यायाम शुरू करना है ऐसा बोलते रहते हैं व्यायाम कभी शुरू होता ही नहीं है इस प्रकार से। तो उसके लिए निश्चय की ही आवश्यकता है और वो मन के अधीन है। एक बार हमने निश्चय कर लिया पक्का कि नहीं अभी ये मुझे करना ही है इस प्रकार से और जब आप साक्षात आरंभ करते हैं तभी वो चीज हो पाती है। अगर आरंभ करेंगे ही नहीं सिर्फ करते रहेंगे ऐसा बोलते रहेंगे तो बोलते ही रहेंगे आगे कुछ होगा नहीं इस प्रकार से। तो स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए या रोग के हिसाब से देखा जाए दोनों तरीके से देखा जाए तो मन का एक बहुत अहम रोल है इस सभी के बारे में
बिल्कुल।
और वैसे देखा जाए तो शुरू के व्याख्यानों में मैंने शायद बताया है कि जीवन क्या है वास्तव में शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग आयु इस प्रकार का बताया गया है। तो शरीर इंद्रिय मन और आत्मा इन चारों का संयोग आयुष्य कहलाता है। तो जब भी हम जीवन के बारे में सोचेंगे तो इन चारों घटकों के बारे में हमें सोचना चाहिए तो मन भी उसमें एक अहम चीज है। और फिलहाल हुआ ऐसे है कि कन्वेंशनल मेडिसिन में शरीर के बारे में बहुत सूक्ष्मता से देखा गया है बहुत सारे
ज्ञान प्राप्त किया गया उसके बारे में बहुत चिंतन हुआ।
माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है बहुत सारी स्कोपीज है सूक्ष्मातिसूक्ष्म सूक्ष्माणु परमाणु से इसको देख पाते हैं इस प्रकार से। लेकिन जितनी गहराई में जाकर शरीर के बारे में सोचा गया उसका 1% भी शायद मैं कहूंगा मन के बारे में सोचा नहीं गया। एक एलेक्सिस कैरल की किताब है मैन द अननोन नोबेल प्राइज विनर किताब है आज से करीबन 60-70 वर्ष पहले की है और फ्री डाउनलोड में अवेलेबल है नेट पर। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से कन्वेंशनल मेडिसिन ह्यूमन बीइंग को अप्रोच कर रहा है उस तरीके से वो कभी भी ह्यूमन बीइंग तक पहुंच नहीं पाएगा। निगेटिव थॉट है लेकिन इस थॉट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला क्योंकि उनका कहना था कि जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें और यंत्रों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें अंतर है। यंत्र एक निर्जीव चीज है और ह्यूमन बीइंग एक सजीव है, जिसको मन है, उसमें आत्मा है, अहंकार है, बुद्धि है, ये सभी चीजें हैं। और हम अभी जो देख रहे हैं वो एक ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि कैंसर हुआ, इस सेल से हुआ, यहां पर फैला हुआ, इस प्रकार से मेटास्टेसिस हुआ, ये स्टेज है, इसके लिए ये करना है, ये नहीं होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन उसका रूट अगर साइकोसोमेटिक है, साइकोलॉजी में है, तो उस साइकोलॉजी को कौन देखेगा? उससे अगर ये निर्माण हुआ है, कैंसर का निर्माण स्ट्रेस की वजह से हुआ है या कि साइकोलॉजिकल शॉक की वजह से हुआ है, इस प्रकार से आया है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसका प्रतिकार होना चाहिए। अभी अगर हम समझने भी की कोशिश नहीं करेंगे तो काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाएगी। और फिर आगे चलकर उसके लिए उपचार किस प्रकार से ढूंढेंगे, ऐसी उसमें अहम चीज है। तो कहने का मतलब यह है कि शायद आरोग्यावस्था हो, शायद रोगावस्था हो, एक मन का अहम रोल इन सभी दोनों चीजों में है। और जब तक हम उसको भलीभांति समझ नहीं पाएंगे तब तक बहुत सारे विकारों पर काबू पाना काफी मुश्किल है। और यह आज की बड़ी समस्या है इस प्रकार से। इसलिए मानव स्वास्थ्य के बारे में अगर हमें सोचना है तो मैं समझूंगा कि मानूंगा कि पहले मन समझने की कोशिश करो, अपना ही मन को झांक कर देखो कैसा है, क्या है इस प्रकार से, और फिर उसके बारे में किस प्रकार से हमें आगे चलना है उसके बारे में सोचो।
जैसे कहते भी है कि खुद को समझ पाना सबसे बड़ी बात है।
बराबर, वास्तव में ऐसा ही है। आत्मस्थे मनसि स्थिरे सशरीरस्य योगज्ञास्तम योगम ऋषये विदु, योग का जो चरक में वर्णन किया गया है कि आत्मा में अगर हम मन को स्थिर कर लेते हैं तो उससे अहम चीज दूसरी कोई है ही नहीं। हमारा होता क्या है कि हमारा सुख दुख हम समझते हैं कि बाहरी चीजों पर निर्भर है,
निर्भर करता है,
और ये वास्तव में सत्य नहीं है। लेकिन इस सत्य के स्वीकार के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक मैं बड़ा अजीब उदाहरण बताता हूं, वास्तव है। योगियों में एक मुक्त योगी नाम का पंथ या एक अवस्था होती है इस प्रकार से कि जो जीते तो है लेकिन अभी उनका आयु शेष है इसलिए जीते हैं, तो पड़े रहते हैं, कुछ खाना मिले न मिले कुछ उसको परवाह नहीं होती। तो ऐसा एक मुक्त जीवन मुक्त योगी था, पड़ा रहता था, तो लोग दोपहर के समय कुछ लाकर उसको दे देते थे, वो जो मिलता वो खा लेता था इस प्रकार से। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि उसको जरा टीज करेंगे, चिढ़ाएंगे इस प्रकार से। उसने क्या किया कि मिर्च बहुत सारी उसको पीस कर खूब लेके गया उसको उसके पास, गोला मिर्ची का गोला खाने के लिए दे दिया, उसने खा लिया। दूसरे दिन ये आदमी देखने के लिए गया कि क्या हुआ, उसका असर क्या है, तो देखा तो वो ऐसा ही पड़ा था और कपड़ों की कुछ शुद्ध नहीं रहती थी, वैसा ही नंगा था। लेकिन गुदद्वार उसमें सूजन आई थी, उसमें से खून बह रहा था और एक कुत्ता आकर वो खून चाट रहा था। देखने के बाद वो बड़ा शर्मिंदा हो गया कि इस आदमी ने मेरा क्या बिगाड़ा था कि मैंने उसको तकलीफ दे दी इस प्रकार से। तो आके जाकर उसने क्षमा मांगी उसकी कि आप मैंने आपको खामखा तकलीफ दे दी इस प्रकार से। तो उसने पूछा क्या हुआ, मैंने आपको ये मिर्ची का वो गोला खाने के लिए कल दे दिया। तो फिर आगे देखो ये सब गुरुद्वार में सूजन है, ये खून बह रहा है, कुतरा खून चाट रहा है इस प्रकार से। उस योगी का जवाब था चमड़ी जाने और कुत्ता जाने। बड़ा अजीब सवाल, अजीब जवाब है। मुझे क्या, मैं तो आत्मा हूं, मुझे इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अलग हूं इससे। उसका जो सुख दुख है वो शरीर को है, मेरा मन अगर उसमें संयुक्त है ही नहीं तो मुझे कोई कुछ अनुभूति होने का सवाल ही नहीं है। जब पहली बार मैंने उदाहरण सुना या कहानी सुनी तो मैं चकाचौंध रह गया कि इतनी विदेहावस्था हो सकती है कि मैं आत्मा हूं और मेरा मन सिर्फ मेरे आत्मा से जुड़ा हुआ है और सच्चिदानंद रूप है आनंद स्वरूप है, तो मुझे सदैव आनंद की ही अनुभूति है, वो शरीर का कुछ भी हो जाए, कोई लेना देना नहीं मुझे उसको, इस प्रकार से चमड़ी जाना और कुत्ता जाना इस प्रकार से। लेकिन काफी आगे क्या
बहुत
हमें शरीर में इतना सा दुख हुआ तो हम कैसे करेंगे, क्या करें, अभी डॉक्टर को बुलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, हम इतने परेशान हो जाते हैं। अभी एक मुझे किसी ने एक और किस्सा सुनाया था, वो भी अजीब है, कि हम अपने को दूसरे किसी चीज से इतना निकटतम कर लेते हैं, वो वही चीज मैं हूं ऐसा समझ लेते हैं, जिस तरह जैसे शरीर के बारे में हम करते हैं। तो बोल रहा था कि अरे जल्दी बात खत्म करो, मेरी बैटरी खत्म हो रही है। इसी की बैटरी खत्म हो रही है, मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है, लेकिन वो एक रूप हो रहा है मोबाइल के मोबाइल से, कि मेरा मोबाइल ये मेरा नहीं रहा, मैं ही मोबाइल हो गया, मेरी बैटरी खत्म हो रही है इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब मामला है कि हम कहां फंस जाते हैं, कैसे फंस जाते हैं इस प्रकार की दृष्टि से।
तो ये भी मन का रूप है,
हाँ,
इसी में इतना विलीन हो जाना।
हाँ, हाँ, हाँ। और अगर हम उतनी गहराई में जाकर अगर आत्मा में विलीन हो जाते हैं तो वो सच्चा आनंद स्वरूप है। मैं हमारा संभाषण निकला था कि बाहरी चीजों में हम सुख दुख को मानते हैं, और वास्तव में ये वास्तव में सुख दुख नहीं है, सब दुख ही है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, इस प्रकार की व्याख्या की गई है सुख और दुख की। जो जो दूसरे के अधीन है वो सब दुख ही है,
सब दुख के कारण।
चाहे मैं कार में जा रहा हूँ, कार बहुत अच्छी है, आलिशान है, मर्सिडीज है वगैरह, जो भी कुछ है इस प्रकार का, लेकिन मेरा सुख अगर उससे जुड़ा हुआ है तो वास्तव में दुख ही है। जो परवश जो जो भी है वो दुख ही है। आत्मा मेरे साथ ही है तो उसमें दुख का लेश इस प्रकार का नहीं है। मैंने ऐसी एक स्टोरी सुनी थी, चार रानियां थी इस प्रकार से, और राजा खुद सभी से पूरी लगन थी इस प्रकार से, लेकिन एक रानी थी उसको तो बहुत मानता था, उसको सजाता था, उसको आभरण देता था, वस्त्र बहुत अच्छे देता था वगैरह वगैरह इस प्रकार से। जब इसके चलने का समय निकला हुआ तो वो बोला कि तुम मेरे साथ आओगी ना, तो बोली नहीं नहीं ये तो मैं सोच भी नहीं सकती आपके साथ आने के बारे में। तो दूसरी रानी की तरफ मुड़ा, वो भी अच्छी थी इस प्रकार से। तो इस कहानी का तात्पर्य अर्थ ये है उसमें अंततः कि केवल आत्मा ही आपके साथ आने वाली है, बाकी कुछ आने वाली नहीं है। रिश्तेदार जो है वो आपको छोड़ने के लिए आएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्मशान भूमि तक जलाने के लिए आएंगे, फिर वापस चले जाएंगे अपने अपने घर इस प्रकार से। शरीर है वो तो जल जाएगा, जिसको आपने इतना अपना समझ के रखा है वो तो साथ नहीं देने वाला। आपके साथ चलने वाला अपना कर्म ही है, और वो कर्म आपके मन वगैरह के अनुसार, जो ये वाल्या कोली जो बोलते हैं रामायण का वाल्मीकि इस प्रकार दूसरी कथा बताते हैं, तो उसमें भी ऐसा बताया गया ना कि वो समझ रहा था कि मैं ये जब लोगों को लूटता हूँ, मारता हूँ, और मैं धर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुटुंब का पोषण उसके ऊपर निर्भर है। और फिर नारद मुनि ने जब बताया, पूछा कि आप जाकर पूछ लो कि उसमें हिस्सेदार, तुम्हारे पाप में हिस्सेदार कौन से हैं, तो सभी ने ना कर दिया। तो इसी प्रकार से ये हिताहित की तरफ प्रवृत्ति मन की जो है ये बड़ा भूलभुलैया है। हम बगैर सोच समझ कर किसी दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, अमार्ग में चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि हम अमार्ग में चल रहे हैं इस प्रकार से। और जब दुर्गति होती है तब पता चलता है कि अरे 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 ये मैंने गलत कदम उठाया इस प्रकार से। तो कहने का मतलब यह है कि हित का मार्ग और अहित का मार्ग, इसका हमें भली भांति पता होना चाहिए,
ज्ञान होना चाहिए
क्या चीज है इस प्रकार से। और इसके इसमें अहम रोल मन का है, क्योंकि मन के द्वारा ही वो ज्ञान होता रहता है इस प्रकार से। और इसलिए चरकाचार्य बताते हैं कि योगे मोक्ष के सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम मोक्ष निवृत्तिर निश्चेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक इस प्रकार से। किसी भी प्रकार की अनुभूति अगर योग और मोक्ष होता है तो नहीं होती है, सिर्फ मोक्ष में पूरी निवृत्ति हो जाती है, आगे कुछ नहीं है। जैसे मुक्त योगी की मैंने बात कही थी, उसके लिए कुछ है ही नहीं है, ये संसार है ही नहीं है, उसका शरीर भी कुछ उसका नहीं है, तो संसार के बारे में तो छोड़ दो ऐसे। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो फिलहाल हम इतनी गहराई में तो नहीं जाएंगे क्योंकि व्यवहार से बहुत दूर हो जाएंगे। व्यवहार में क्या है कि कामक क्रोधादि विकार है जो छोटे छोटे दिखते हैं शुरू में इस प्रकार से, और वही बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का मूल है। उनसे कम कैसे निपटारा करें, ये अहम चीज है इसके बारे में। तो मेरे ख्याल में आप ही ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि एक घंटे का विषय है नहीं ये,
और इसके बारे में हम आगे भी चलकर बातें करेंगे।
हाँ, बातें करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ी इंट्रोडक्शन अगर इसमें हो जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसा है, सांख्य तत्व ज्ञान के अनुसार मन त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस और तमस, ये त्रिगुण बतलाए गए हैं। और ये मन की जो निर्मिति है, गर्गुण गण है, वो इन सत्व रजस तमस से जुड़ी हुई है। तो इनके जरिए आने वाले कामक क्रोधादि विकार ये अवश्यंभावी है, उसको टालना काफी मुश्किल काम इस प्रकार का। तो मान लेना चाहिए कि ये होने वाले हैं। उसके ऊपर काबू पाना यही हमारे लिए सबसे अहम है। ये विचार इस प्रकार के आते रहेंगे, क्रोध के हम वश हो जाएंगे, काम के वश हो जाएंगे, वगैरह वगैरह इस प्रकार के। लेकिन चरकाचार्य बताते हैं कि कुछ धारणीय वेग है, कुछ अधारणीय वेग है इस प्रकार से। शायद हमने आरोग्य के बारे में जब मुलाकात की उसमें मैंने शायद बताया होगा, मुझे अभी पक्का याद नहीं है, लेकिन मराठी में तो मैंने बताया है शायद कि ये काम क्रोध वगैरह जो विकार है ये धारणीय वेगों में है, कि उनको एक्सप्रेस नहीं होने देना है, और वो कम कैसे हो जाए उसके बारे में सोच,
उसके बारे में
ऐसा है। लेकिन अभी मल प्रवर्तन का वेग है, मूत्र प्रवर्तन का वेग है, तो उसको रोकना नहीं है, वो अधारणीय इस प्रकार के वेग बताते हैं, ऐसा है थोड़ा सा। तो एक एक से अगर लेकर शुरुआत करेंगे तो काम एक पहला इसमें वेग है। काम का सच्चा मतलब है इच्छा, कुछ भी इच्छा, कुछ भी पाने की इच्छा इस प्रकार से, और खासकर वैषयिक का इच्छा भी इसमें शामिल हो जाती है। सेक्स की जो डिजायर है वो भी काम वासना उसको कहते हैं, ऐसा है। और बाद में काम शब्द ज्यादातर उस अर्थ में वही उसका अर्थ हो गया, लेकिन कामक शब्द का मूल अर्थ जो है वो इच्छा इस प्रकार का है, कौन सी भी इच्छा, कुछ पाने की इच्छा। अब मन बड़ा अजीब है कि अगर अनिष्ट गोष्ठ हमें, अनिष्ट चीज हमें प्राप्त हो गई जो हम चाहते नहीं थे, तो हमें दुख होता। हमने एक ट्रेन पकड़ने की सोची है और देर हो गई, रास्ते में अटक गए, कुछ भी हुआ और समय पे पहुंच नहीं पाए, तो जो चाहते नहीं थे कि ट्रेन छूट जाए वो हो गई, अनिष्ट चीज है, या प्लेन छूट गया इस प्रकार से, तो दुख होता है, अरे कैसा हो गया, मेरा ही नसीब इतना बेकार है वगैरह, इस प्रकार से हम कोसते रहेंगे इस प्रकार से। तो अनिष्ट से लाभ, अनिष्ट चीज है उसका लाभ होने से मन दुखी हो जाता है, और लाभात अलाभाच इष्ट से लाभात अलाभात वा, इस प्रकार से जो चीज हमें चाहिए वो अगर मिलती नहीं है, मैं पहले नंबर से उत्तीर्ण होना चाहता था, मिला नहीं पहला नंबर, किसी दूसरे को व्यक्ति को मिल गया इस प्रकार से, तो जिसकी मैंने कामना की थी वो सफल नहीं हुई इस प्रकार से, तो दुख होता है इस प्रकार से। लेकिन पहले आते भी है तो भी दुख होता है, बड़ी अजीब चीज है। लेकिन ऐसा होता है फिर मैं सुप्रीमसी मुझे लगने लगती है, मद उससे निर्माण होता है, क्या मैं ही सबसे बेहतर हूँ,
मैं सर्वोत्तम,
हाँ हाँ सर्वोत्तम हूँ इस प्रकार से, और फिर ये जो दर्प अभिमान गर्व इस प्रकार की चीजें है वो उसको फिर आगे लेकर दुख देती है इस प्रकार का। अनिष्ट से लाभात, लाभात अलाभात वा इष्ट से, इष्ट चीज मिली नहीं या मिली भी तो भी दुख होता है, और अनिष्ट चीज मिल गई तो दुख होता है। तो हम कामना करते रहते हैं विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न विभिन्न चीजों की, वो नहीं मिली तो भी दुख है, मिली तो भी दुख है, जो चीज नहीं चाहते हैं, जिसकी कामना नहीं करते हैं, वो मिली तो भी दुख है। इस प्रकार से फिर ऐसे अवस्था में कामना करनी है नहीं करनी है, ये बोलते कि नहीं कामना तो होती रहेगी क्योंकि ये रजोगुण जो है हमारे पास, तो उसके कारण एक संग बढ़ता है और संग होने के कारण आसक्ति निर्माण होती है कि मुझे ये चीज चाहिए वगैरह इस प्रकार से। और कुछ हद तक के लिए या आपके उन्नति के लिए भी आवश्यक है। अगर हम कामना करेंगे कि मुझे ऐसा बनना है, वो करना है, ये करना है, तो फिर उस दिशा में आप कदम उठाएंगे तो आपकी तरक्की होगी, समाज की तरक्की होगी। तो उसको कुछ उद्दिष्ट होना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम कामना ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ बात आसक्ति की है, उसमें अगर हम आसक्त हो जाते हैं, ये नहीं मिला तो हमें दुख होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार की जो चीजें हैं, या फिर उसको पाने के लिए हम अनैतिकता के ऊपर उतर आते हैं कि किसी भी चीज में, किसी भी हालत में मुझे ये चीज मिलनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, इस प्रकार से तो अधर्म शुरू हो जाता है और फिर इस प्रकार की कामना अच्छी नहीं है। वो कामवासना में भी यही चीज रहती है कि किसी भी चीज कोई भी हो लेकिन मुझे ये करना ही है, तो उसी के जरिए रेप हो जाते हैं और फिर वो समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, दोनों व्यक्तियों के लिए भी अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कहां उसको कंट्रोल करना है और धर्म के अधीन रहकर उससे समाधान प्राप्त करना है और उसमें आसक्त नहीं होना, ये बड़ी अजीब अजीब बातें हैं,
बहुत बहुत ऊंची बात है।
हाँ, ऊंची बात है। तो छोटी छोटी गोष्ठियों की कामनाएं करो, उसके लिए प्रयास भी करो, उद्दिष्ट हासिल करो, लेकिन उसमें आसक्त मत बनो और वो नहीं मिला तो दुख मत करो, कोशिश जारी रखो, ऐसा थोड़ा सा उसमें संदेश है। तो ये अगर करते रहेंगे तो उन्नति रहेगी और अध्यात्म में भी उन्नति होगी, क्योंकि इसमें मन की एक शिक्षा है इस प्रकार से कि सीखना है उसको कि अगर मिलता भी नहीं है तो उसको स्वीकार करना है, लाभालाभ जया जय जिस प्रकार गीता में कहा गया है। तो उसको अगर हम भली भांति कंट्रोल में रखेंगे तो वैसे कामना बुरी चीज नहीं है। हर चीज के बारे में इस प्रकार से बता सकते हैं, कामना भी बुरी चीज नहीं है, क्रोध भी बुरी चीज नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन अगर उसके ऊपर काबू है तो, काबू नहीं है तो उससे बुरी चीज नहीं है। और यही हम समाज में देखते हैं कि काबू नहीं रखा जाता उसके ऊपर और फिर
हम उसके अधीन हो जाते हैं,
सब अनएथिकल चीजों को जन्म मिलता है इस प्रकार से। दूसरा जो है वो क्रोध है कि एक मराठी नाटककार है वसंत रानेटकर, उन्होंने एक नाटक में एक व्याख्या की है क्रोध की, कि क्रोध यानी कि दूसरे के किए हुए किसी गलत कार्य के लिए खुद को सजा देना, ऐसा उन्होंने उसकी व्याख्या,
दूसरों के किए हुए कार्य के लिए खुद को
सजा देना इस प्रकार से। तो क्या करते हैं हम कि प्रज्वलित में आत्मानम मन्यते, जैसे कि हम ज्वलित तो हो गए अंदर से इस प्रकार से, तड़प रहे हैं या जल रहे हैं अंदर से, इस प्रकार की प्रतीति होती है। तो ये क्यों होता है, क्या होता है, ये अगर गहराई में जाकर सोचने की कोशिश करेंगे तो दूसरे किसी ने कुछ काम नहीं किया, गलत किया वगैरह वगैरह इस प्रकार से कुछ हुआ और इसलिए आप उसके ऊपर संतप्त इस प्रकार के हो गए, और जितना गुस्सा आप उसके ऊपर उतारते हैं उससे 10 गुना गुस्सा आप अपने ऊपर उतारते हैं, जो अपने ऊपर जो उसका परिणाम होता है वो 10 गुना ज्यादा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। कोलटकर जी ने अजीब उदाहरण बताया था, सत्य घटना थी कि कोई एक सदाशिव पेठ पुणे के लिए एक खास चीज है, तत्वों के बारे में लड़ने वाले लोग इस प्रकार। तो 11:30 बजे रिक्शा से घर पहुंचा, 4 रूपये रिक्शा के जरिए हुए थे जो किराया था। अब नियम ऐसा है कि 12 बजे के बाद 1.5 गुना 4 रूपये, तो 6 रूपये होते हैं 12 बजे के बाद, यहाँ पे तो 11:30 बजे थे तो उसको 4 ही रूपये देना चाहिए था। तो रिक्शा वाले ने कहा नहीं, मुझे 6 रूपये चाहिए। तो संतप्त हो गए, फिर बातचीत बढ़ी और बढ़ी इस प्रकार से हुआ और फिर इनको इतना गुस्सा आया कि उनका हार्ट अटैक हो गया और उनका मृत्यु हो गया वास्तव में। सत्य घटना है। तो कलटकर जी ने पूछा कि क्या हमारी जान 2 रुपए के बराबर है कि 2 रुपए के लिए हमने जान गंवा दी। तो किसी व्यक्ति ने कहा ये 2 रुपयों का सवाल नहीं है, ये तत्व का सवाल है। कलटकर सर बोले हाँ बराबर है, तत्व का सवाल है, लेकिन उसमें गुस्से का क्या बात है, उस गुस्से का क्या मतलब है। अगर तत्व का ही सवाल है तो आप शांत रहिए और कहिए मैं 2 रुपए नहीं देने वाला, तुम्हें क्या करना है करो। इस प्रकार से चाहे तो पुलिस में जाएंगे हम दोनों मिलकर इस प्रकार से। और अगर ये झंझट नहीं चाहिए तो ये 2 रुपए ले लो और फूटो। ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है, मेरे 2 रुपए ज्यादा जाने वाले हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन सोचते नहीं ये लोग इस प्रकार से। और फिर यहां तो मृत्यु हो गई इस प्रकार से। लेकिन काफी चीजें, हाइपरटेंशन होता है, हार्ट अटैक होता है, एसिडिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती है केवल गुस्से के कारण इस प्रकार से होती है। एक मैंने अजीब घटना सुनी थी, विदेश में घटी हुई है, कि किसी एक तरुणी ने लिफ्ट मांगी एक तरुण से, उसने लिफ्ट तो दे दी, आगे चलकर उसके ऊपर रेप किया और फिर एक कोर्ट में मुकदमा चला, वो पकड़ा गया, उसको कारावास भी हुआ। वो कारावास भुगत कर वो बाहर आ गया और वो सामान्य रूप से जीने लगा। लेकिन ये जो लड़की थी वो कभी भी पूरे जिंदगी भर वो विषय भूल नहीं पाई और उसकी जिंदगी पूरी बेकार रही, वो तड़पती रही, सिर्फ अंदर जलती रही, कुछ नहीं हो पाया उसको। तो ये बड़ा अजीब है इस प्रकार का मामला। तो क्रोध अच्छी चीज है ही नहीं वास्तव में। लेकिन फिर भी दृष्टि से अगर हम देखते हैं इसी चीज को कि क्रोध आना, कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं कि अगर आप उस भूमिका में उस समय रहते तो आपको भी गुस्सा हो जाता। तो कलटकर जी कहा करते थे ये समर्थन का विषय नहीं है, ये हिता और अहित की बात है। शायद उस स्थिति में गुस्सा आना स्वाभाविक था या समर्थनीय था, फिर भी वो हित में था या अहित में था उस व्यक्ति के, तो निस्संशय अहित में ही था। तो अगर आप हिताहित की बात करते हैं तो ये समर्थन का मुद्दा आता ही नहीं है, गुस्से का समर्थन करने का इस प्रकार। अगर हमें समर्थन करना है तो दूसरी तरीके से समर्थन करना है कि ठीक है आप गुस्सा हो जाओ मान्य है, फिर सोचो उसके बारे में गहराई में जाकर कि परिस्थिति के बारे में बदलने में हमें क्या करना है। फिलहाल भारत में सत्ता परिवर्तन हो गया और नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे ढंग से विजयी हुए इस प्रकार से। तो ये एक तरीके से लोगों में असंतोष जो था उसका फायदा उन्होंने उठाया, उनमें कुछ ना कर्तृत्व है जो उन्होंने गुजरात में दिखाया है इस प्रकार से। तो ये गुस्से का परिवर्तन भली भांति लोकतंत्र के दृष्टि से हुआ, ये सबसे अहम चीज है कि कहां कहीं दंगा धोपा नहीं हुआ है, हिंसाचार नहीं हुआ है, सभी लोगों ने मिलकर सरकार को चुन लिया है और उनको बहुमत स्पष्ट रूप से बहुमत इस प्रकार का मिला है। तो ये गुस्से का बहुत अच्छा रूप है,
अच्छा परिणाम,
हाँ, अच्छा परिणाम है कि लोग सोच समझकर कुछ कर रहे हैं, गुस्से में है, फिर भी जब जो चीज उनके हाथ में है उसको उन्होंने भली भांति निभाया और गुस्से का परिवर्तन भली भांति निभाया इस प्रकार। आयुर्वेद की परिस्थिति जब मैं देखता हूं, मैंने मराठी में ये बात बताई थी कि हमारे देश में हमारा ही शास्त्र अल्टरनेटिव है, पर्यायी है। क्यों? चीन में चीनी वैद्य जो है वो पर्यायी नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। भारत स्वतंत्र देश है, अभी इतने सारे बरस हो गए और फिर भी हम राष्ट्रीय अस्मिता को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे साइंसेस है पुराने जमाने से लेकर, किसी का ध्यान ही नहीं है। हमारा अर्थशास्त्र इतना अच्छा है, हमारा गणित इतना अच्छा है, हमारा योग इतना अच्छा है, अध्यात्म इतना अच्छा है, कोई सुखो पथ भारतीय होकर भी हमें पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन सिर्फ गुस्सा करने से कोई बात नहीं होगी, उस गुस्से का परिवर्तन, इस स्थिति को अगर हमें बदलना है तो शांत होकर ये स्थिति क्यों निर्माण हुई ये देखना है और फिर उसके बदलने के लिए क्या क्या करना है वो सोचना है और उसके अनुसार स्टेप्स लेने हैं। ऐसा बैठ कर तो कुछ नहीं होगा क्या ऐसा ऐसा अल्टरनेटिव नहीं है, बड़े दुख की बात है, कोसने की बात है, हम राज्य सरकार को निंदा करेंगे वगैरह, ऐसे ऐसा कोई बात नहीं, इससे बात बनी ही नहीं। तो हमें ये लोगों को समझाना पड़ेगा कि आयुर्वेद कितना महान है, आयुर्वेद कितना अच्छा है, ये सबसे पुरानी सिस्टम है, सभी रोगों को हैंडल करती थी, सर्जरी भी आयुर्वेद की है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो मैंने पहले पहली मुलाकात में बताया था आयुर्वेद के 8 ब्रांच वगैरह के बारे में। तो पोटेंशियल तो है आयुर्वेद में, उसको अगर हम लेकर समाज की तरफ जाएंगे तो ये गुस्से का परिवर्तन अच्छी चीज में होगा। तो हमें गुस्सा आना चाहिए कुछ हद तक, और फिर उसको हमें भलीभांति इस्तेमाल करके परिवर्तन लाना है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो गुस्सा अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर काबू पाना ही उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर एक दूसरा तरीका ऐसा रहता है गुस्से के ऊपर काबू पाने का, अपने अहंकार के जरिए उसके ऊपर काबू पाना है कि मेरा गुस्सा है ऐसा हम बोलते हैं, तो मैं उसका मालिक हूं और वो मेरा नौकर है इस प्रकार से, तो जो मैं कहूंगा वो उसको करना है, इसमें उल्टी परिस्थिति हो जाती है, वो मेरा मालिक बन जाता है और गुस्से में आकर मैं कुछ भी कर बैठता हूं,
मैं उसके अधीन हो जाता
हूं। हाँ, तो फिर अगर ऐसी स्थिति है वो मेरा गुस्सा कहां रह गया, वो गुस्से ने मुझ पर काबू पा लिया, मैं उसका नौकर बन गया, ऐसा हो गया। तो अहंकार को जागृत करो और फिर उसके जरिए इसके ऊपर काबू पाओ, ऐसा एक तरीका बताते हैं कुछ लोग, कुछ हद तक ये काम करता भी है लेकिन फिर भी उसमें अहंकार बढ़ता है कि देखो मेरा गुस्सा भी मेरे काबू में है इस प्रकार से तो ये अहंकार बढ़ना भी अच्छी चीज नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर इस प्रकार के जो बताते हैं, तो एक मद की स्थिति होती है कि सुप्रीमसी इस प्रकार की, मैं ज्ञान से ऊंचा हूं, मैं पोजीशन से ऊंचा हूं, मैं अमीर हूं, इस प्रकार का हूं, उस प्रकार का हूं, देखो मुझमें कितनी खूबियां हैं वगैरह वगैरह, तो ये भी अच्छा नहीं है बिल्कुल। नीति शतक में भर्तृहरि का एक श्लोक है, यदा किंचित न्योहम गजे वो दांधसम हो, जब मुझे थोड़ा थोड़ा समझने लगा तो मुझे से बदांध हती जैसा बदांध हो गया, तदा सर्वज्ञोस्मि इति भवदवलिप्तम मम मनः, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं सर्वज्ञ हूं, सभी कुछ जानता हूं इस प्रकार से। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, और जब मुझे सज्जनों से या ज्ञानी लोगों से थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त होने लगा, तदा मूर्खोस्मि इति ज्वर वेदों मदों में व्यपगता, तो मुझे समझ में आया कि मैं मूर्ख हूं जैसे ज्वर निकल जाता है वैसे मेरा मद निकल गया इस प्रकार के। हमारा ज्ञान एक सागर के एक बिंदु की तरफ अगर है, या अगर हम भलीभांति समझ लेते हैं, तो क्या बोझ करने का है उसके बारे में, क्या अहंकार करने का है उसके बारे में, कुछ भी नहीं जानते हम, इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन यह स्थिति तब आएगी जब सच्चे ढंग से अब हम ज्ञान लेना आरंभ करेंगे, और जब तक ये अहंकार रहेगा तो हम ज्ञान लेने की बात ही नहीं होगी, हम सर्वज्ञ हम क्यों ज्ञान लेंगे, इस प्रकार से रहेगा। तो ये मद इस प्रकार का है, एक प्रकार का एक मोह इस प्रकार का निर्माण हो जाता है कि क्या कार्य है क्या अकार्य है यह समझ में नहीं आता। चांगदेव की कथा प्रख्यात है इसके बारे में कि ज्ञानेश्वर को मिलने के लिए वो व्याघ्र के ऊपर सवार होकर आए इस प्रकार से, और हाथ में चाबुक के लिए सर्प को लिया था, तो ज्ञानेश्वर ने समझ लिया कि अहंकार हो गया इसको कि मैंने ये सृष्टि पर काबू पा लिया है इस प्रकार से। निवृत्तिनाथ से अनुमति मांगी और भित्ति को ही चलाया ज्ञानेश्वर ने इस प्रकार से, तो लज्जित हो गए चांगदेव। फिर उन्होंने एक खत लिखने के बारे में सोचा और उलझन में पड़ गए, मोह में पड़ गए कि क्या लिखूं, ये तो बहुत छोटा है उम्र में मेरे ख्याल से, तो अनेक आशीर्वाद इस प्रकार से लिखूं, तो ज्ञान में तो बहुत बड़े हैं, तो मैं कौन होगा उनका आशीर्वाद देने वाला इस प्रकार से, आए मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, तो उलझन में पड़ गए, मोह में पड़ गए और कोराई कागज भेज दिया। तो फिर ज्ञानेश्वर ने कहा देखो 1400 बरस इन्होंने तपस्या की है फिर भी चांगदेव एक कोरे कागज के जैसा है। और फिर आगे मुक्ताई ने उसको उपदेश दिया है, वो उसकी गुरु बनी। तो कार्याकार्य अनभिज्ञत्व, क्या करे या क्या न करे, इस प्रकार का मोह निर्माण हो जाता है, खास करके धर्म के मार्ग पर चले या अधर्म के मार्ग पर चले, ये बड़ा संदेह स्थल होता है। हम देखते हैं कि धर्मों पर चलने वाले लोग दुखी है, संसार के हिसाब से देखा जाए तो उनके रहन सहन अच्छे नहीं है, उनका तनख्वाह उनकी कम है, बहुत सारे दुख दहल झेलने पड़ते हैं इस प्रकार से, और वो किसी प्रकार के अधर्म करके जिन्होंने पैसा कमा लिया है वो सभी, चाहे वो राजकारणी हो और कोई हो, गुनहगार हो, मजे से जीना जी रहे हैं इस प्रकार से, सभी प्रकार से के सुखोभोग उनके सामने है। तो क्यों मैं धर्म के मार्ग पर चलूं? ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अधर्म के मार्ग पर जाने पर भी सुख मिलता है, दुख क्या है वहां पे इस प्रकार से, तो ये गलत सहमी है, ये मोह है इस प्रकार से। अगर हम उस मार्ग में चले गए तो फंस जाएंगे। तो ये मोह क्या करना है क्या नहीं करना है ये भली भांति समझ लेना बहुत जरूरी है। मेरी फैमिली इस मार्ग से गुजरी है। मेरे पिता सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर थे और वो बिल्कुल अनकरप्ट आदमी थे, तो उनको बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने 5 बरस पहले इस्तीफा दे दिया, अपने त्याग पत्र दे दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे ऊपर संस्कार अच्छे हुए, हमारे यहां पैसा कम रहा वो अलग चीज है इस प्रकार से। मेरा खुद जब क्लिनिक शुरू करना था तो मेरे पास 1000 रुपए नहीं थे, क्योंकि कुछ था ही नहीं, पिताजी के यहां कुछ था ही नहीं, तो जो शुरुआत करनी है वो शुरू से ही करना है ऐसा। फिर भी मैं मानता हूं कि अच्छा हुआ कि उन्होंने इस प्रकार से रिश्वत लेके पैसे नहीं कमाए, नहीं तो मेरे ऊपर वैसे ही संस्कार हो जाते और मैं बहक जाता इस प्रकार से। तो ये मार्ग जो है मोह इस प्रकार का निर्माण होता है वो इस प्रकार से टालना है। तो और एक लोभ एक चीज है कि न जातुक का काम कामाना भूगेन शाम्यति, थोड़ा हासिल कर लिया फिर आगे चाहते हैं कि और थोड़ा चाहिए और थोड़ा चाहिए, ये कभी न मिटने वाली चीज है लोभ, ये जो है वो न मिटने वाली चीज है। चरक में भी एक नैष्टिक चिकित्सा इस प्रकार से बताई गई है और चक्रवाणी दत्ता एक्सप्लेन करते हैं, निष्ठा अत्यंत दुख मोक्ष मोक्ष रूपा तदर्थम भूता नैष्टिक, इस प्रकार शारीरिक स्थान में विषय है। तो वो बताते हैं कि कोशकारो यथा ही अंशन उपादत्ते वध प्रदान उपादत्ते तथार्थे तुष्णा मध्य सदातुरा, इस प्रकार की एक कोशकार है रेशम का जो कीड़ा बोलते हैं, वो अपने ऊपर एक आवरण बना लेता है जो रेशम कहते हैं उसको, और वही आगे उसके मृत्यु का कारण हो जाता है। क्योंकि उस रेशम को हासिल करने के लिए उसको उबलते हुए पानी में डाल देते हैं, वो अंदर मर जाता है। तो उपादत्ते तथार्थे तुष्णा मध्य सदातुरा, सदातुरा जो आदमी है वो तृष्णा को बढ़ावा देता रहता है, उपभोग लालसा जो उसके है वो बढ़ती ही जाती है इस प्रकार से बताते हैं। तो इसका कभी अंत नहीं है इस प्रकार की तृष्णा जो बढ़ती जाती है, लोभ जो बढ़ता जाता है। हमारे स्कूल लेवल में एक अनंत काणेकर जी का लघु निबंध था, मुठो शून्य इस प्रकार का, बड़ा शून्य इस प्रकार से। तो उसमें समय 8वीं 9वीं कक्षा में था वो, कुछ हमारे समझ में तो कुछ आए नहीं, वो उस उम्र में क्यों रखा था ये मुझे आज भी संदेह की स्थिति है। आज मैं जब वो याद करता हूं तो अनंत काणेकर जी ने बहुत बढ़िया चीज बताई है उसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें ऐसा कहा था कि मैथमेटिक्स के हिसाब से 5 में से 5 कट हो जाता है, कम हो जाता है तो शून्य आता है, 5000 से 5000 कम हो जाते हैं तो भी शून्य ही आता है, और दोनों शून्य एक सरीके है, उसमें कोई भेद नहीं है, अंतर
शून्य शून्य,
हाँ शून्य शून्य ही है। तो इनका कहना था ऐसा कैसे हो सकता है, 5 में से 5 निकल जाएंगे तो जो शून्य रहेगा छोटा शून्य रहेगा, और 5000 से 5000 निकल गए तो बड़ा शून्य होगा, और 5 लाख से 5000 निकल गए तो और भी बड़ा शून्य होगा इस प्रकार से। तो सही है ये बात, हम चाहते हैं कि अभी मैं क्लार्क हूं, अभी मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, फिर आगे उसके जाकर सुपरिंटेंडेंट बन जाऊंगा और कुछ बनूंगा वगैरह वगैरह, आखिर में शून्य होगा लेकिन ये बड़ा शून्य होगा इस प्रकार से। जितनी हमें सुख सुविधाएं मिलेगी उतना दुख भी मिलेगा, दोनों की वजह बाकी जो बोलते हैं उसमें से ये दूर करेंगे तो हाथ में शून्य आने वाला है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम तरक्की के ऊपर है, तरक्की कर रहे हैं इस प्रकार से। अष्टांग संग्रह एक बड़ा अजीब सूत्र आया है, अत्यायासेन आत्मानम कुर्याद अति समुच्चितम पातो यथा ही दुखाय नोचराया सुख पृथ्वी, कि बहुत कष्ट करके बहुत मेहनत करके अपने को ऊंचे स्थान में लाने की कोशिश मत करो। क्यों? पातो यथा ही दुखाय नोचराया सुख पृथ्वी, उसमें पतन होने पर जो दुख होगा उसके आगे ऊपर चढ़ने का सुख इतना नहीं है, गिरने का दुख बहुत ज्यादा है, ऊपर चढ़ने का सुख उतना नहीं है इस प्रकार से। तो हमें ये सोच लेना है कहां रुकना है, ये बात रुकने की है ही नहीं, ये तो सिलसिला बढ़ता जाएगा और तृष्णा बढ़ती रहेगी और उपमुलालसा बढ़ती रहेगी इस प्रकार से। तो ये लोभ के बारे में इस प्रकार के है। और एक मच्छर नाम की चीज बताई गई है कि दूसरे को कुछ मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा,
ईर्ष्या
पर संबंध प्रतिषेध इच्छा इस प्रकार से बताते हैं। और कुछ लोग उसके लिए गलत कदम भी उठाते हैं कि अरे वो कैसा आएगा पहला, नहीं वो बीमारी होना जाना चाहिए परीक्षा के समय, या उसको एक्सीडेंट हो गया तो कितनी बाहर हो जाए वो परीक्षा नहीं दे पाएगा इस प्रकार से। वाग्भटाचार्य इससे एक क्विज देते हैं, हेतो विरसित फले न तो, ईर्षा अगर करनी है तो कारणों की ईर्षा करो कि वो पहला क्यों आता है, वो अच्छा अच्छी पढ़ाई करता है, प्रश्न पत्रिका को लिखता है, उत्तर लिखकर प्रैक्टिस करता है उसकी वगैरह वगैरह, या सोचता है वगैरह जो भी चीजें हैं जिसके जरिए वो पहला नंबर हासिल करता है, तो उनकी ईर्षा करो तो वो चीजें सब तुम करने लगो तो तुम्हारी वो तरक्की होगी इस प्रकार से। शायद तुम पहला नंबर पाएंगे ना पाएंगे अलग चीज है, लेकिन तरक्की तो हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये जो काम क्रोधादि षड रिपु जिसको कहते हैं, रिपु इसलिए कहते हैं कि ये शत्रु जैसे है तो हमारा मन स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं इस प्रकार से है। और उनके अगर अगर ऊपर अगर हम काबू पाते हैं तो ही हम शांति से जीना पार कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये काफी बड़ा विषय है
जी,
और उसके रोग स्वरूप में भी बहुत सारी बीमारियां हैं कि जो चिंता क्रोध स्ट्रेस वगैरह, स्ट्रेस तो अभी काफी मशहूर है इसके सभी के बारे में। और हम भली भांति जानते हैं कि केवल शारीरिक दृष्टि से उसको देखकर काम होने वाला नहीं है, मानस भाव जो है वो आरोग्य के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो शायद इस मुलाकात का सिलसिला आगे चलाएंगे, इससे मुझे मालूम नहीं एक मुलाकात में विषय खत्म होगा ऐसा ही होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कम से कम, तो सिलसिला आगे रखेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ।
तो आज की बातचीत का हम सिलसिला यहीं पूरा करते हैं और बाकी बातें हम अगली बार करेंगे।
नमस्कार,
बहुत बहुत धन्यवाद।
ये प्रसारण का आभार व्यक्त करता हूं और ये जो मुझे मौका मिला है इसके बारे में धन्यवाद
जी। नमस्कार।